आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहम साइंसी तहकीक में सहूलत फराहम करने के लिए तीन परम रुद्र सुपर कम्प्यूटर्स को मुल्क के नाम वक्फ किया। उन्होंने मौसम और आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक तहकीक के लिए आला कारकर्दगी के हामिल कम्प्यूटिंग सिस्टम का भी इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमाओं ने हरियाणा में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात और जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम तेज कर दी है। मरकज ने यकुम अक्टूबर से मेहनत कशों के लिए कम से कम उजरत की शरों में इजाफे का ऐलान किया है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैखों ने इस्लाहशुदा अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल यूएनएससी के एक मुस्तकिल रुकन के तौर पर भारत की शमूलियत की भरपूर हिमायत की है। इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। उसने बढ़ते हुए आलमी दबाव के दरमियान जंगबंदी की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। और बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत मकाऊ ओपन के मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। गायत्री गोपीचंद और त्रेसा जोली पर मुश्तमिल खवातीन की डबल्स की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पुणे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम साइंसी तहकीक में सहूलत फराहम करने के लिए तीन परम रुद्र सुपर कम्प्यूटर्स को मुल्क के नाम वक्फ किया। कौमी सुपर कम्प्यूटिंग मिशन के तहत तकरीबन 130 करोड़ रुपए की लागत से इन तीनों सुपर कम्प्यूटर्स को मकामी तौर पर तैयार करके पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया गया है। जनाब मोदी ने मौसम और आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक तहकीक के लिए आला कारकर्दगी के हामिल कम्प्यूटिंग सिस्टम एचपीसी का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आज का ये आगाज 21वीं सदी के भारत को उजागर करता है कि किस तरह वो साइंस, टेक्नोलॉजी और तहकीक को तरजीह देकर आगे बढ़ रहा है।
साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है। 21वीं सदी का भारत कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहा है। आज का भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसरों को तराश रहा है।
उन्होंने कहा कि डिजिटल इंकलाब के दौर में कंप्यूटिंग की सलाहियत कौमी सलाहियत का एक मुतबादल बन रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत के लिए आज का दिन बड़ी कामयाबी का दिन है। यह इस बात की भी अक्कासी करता है कि 21वीं सदी का भारत किस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी और तहकीक को तरजीह देकर आगे बढ़ रहा है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि कोई ऐसा शोबा नहीं है जो टेक्नोलॉजी और कम्प्यूटिंग की सलाहियतों पर बराह रास्त मुनहसर न हो। यह सेक्टर 4.0 में भारत की कामयाबी की सबसे बड़ी बुनियाद है। जनाब मोदी ने कहा कि आज की कामयाबी ये जाहिर करती है कि मुल्क सही रफ्तार से सही समत में आगे बढ़ रहा है।
आज की ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि हम सही दिशा में सही गति से आगे बढ़ रहे हैं। नया भारत अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानवता की सेवा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है।
वजीर आजम ने कहा कि भारत खुद का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जो कि आलमी सप्लाई चेन का अहम हिस्सा होगा। वजीर आजम ने कहा कि साइंसी तहकीक के जरिए टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद कफील होना मुल्क का ख्वाब है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे इकदाम की मदद से दुनिया और बनीनु इंसान को बाख्तियार बनाने के लिए पुरअज्म है। इस मकसद के लिए गगनयान जैसे अंगेज प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमाओं ने हरियाणा में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात और जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम तेज कर दी है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के बूथ सतह के बीजेपी कारकुनान से खिताब किया। जनाब मोदी ने कहा कि बीजेपी रियासत में बदउनवानी से पाक सरकार चला रही है। उन्होंने उजागर किया कि किसी भी गलत तरीके का सहारा लिए बगैर रियासत के नौजवान रोजगार हासिल कर रहे हैं।
मैं हरियाणा के में धरती पर काम कर करके निकला हुआ कार्यकर्ता हूं और मेरा पक्का विश्वास बना है कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी को फिर से एक बार सेवा करने का मौका देना तय कर लिया है, क्योंकि उनको खुशी है कि 10 साल में बिना भ्रष्टाचार के सरकार चलाना ये हरियाणा में पहली बार हुआ है।
कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए जनाब मोदी ने इल्जाम लगाया कि पार्टी गिरोहबंदी, अंदरूनी लड़ाई झगड़े और एक दूसरे की मुखालफत की शिकार है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी पार्टी हरियाणा की आवाम का एतमाद कभी नहीं जीत सकती। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने बेरोजगारी और किसानों के लिए कम से कम इमदादी कीमत जैसे मसाइल पर एनडीए सरकार की तनकीद की। करनाल जिले में असान में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए जनाब गांधी ने हरियाणा के लिए कांग्रेस के इंतखाबी वादों के बारे में बात की।
2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा।
हरियाणा में 90 असेंबली हलकों के लिए 5 अक्टूबर को पोलिंग होगी। हरियाणा से आम आदमी पार्टी आपके रहनुमा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जनाब शर्मा ने आज चंडीगढ़ संत कबीर कुटीर में हजारों हामियों के साथ वजीर आला नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात तमाम सियासी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। इस मरहले के तहत मरकज के जेर इंतजाम इलाके के 40 असेंबली हलकों में आइंदा मंगल के रोज वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने जम्मू के उधमपुर में एक चुनाव रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को फैसलाकुन शिकस्त दी जा चुकी है और उसे वापस आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जनाब शाह ने बीजेपी हुकूमत के तहत दहशतगर्दी से पाक खित्ते का वादा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार ने दफा 370 को मनसूख करके पार्टी के बानी और सरपरस्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नजरिए को पूरा किया है।
आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में ना धारा 370 है ना अलग झंडा है।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ में एक इंतखाबी रैली की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा हफ्ते के रोज जम्मू में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी हुकूमत ने बदलते महंगाई भत्ते पर नजरसानी करते हुए कम अज कम उजरत में इजाफे का ऐलान किया है। उजरत में ये नए इजाफे यकुम अक्टूबर से नाफिजुलअमल होंगे। नजरसानी शुदा उजरत में इजाफों का मकसद मेहनतकशों बिलखसूस गैर मुनज्जम शोबे के कारकुनों की मदद करना है। कम अज कम उजरत की शरह हुनरमंदी और जोग्राफियाई इलाके ए बी और सी जुमरों में तकसीम किए गए हैं। जुमरा ए में तामीराती शोबा सफाई झाड़ू लगाने माल ढोने और माल उतारने के लिए गैर हुनरमंद अफराद के लिए 783 रूपये यौमिया रकम तय की गई है। जुजवी हुनरमंद कारकुनों के लिए कम अज कम उजरत 868 रूपये और हुनरमंद क्लर्क के कामों के लिए कम अज कम उजरत 954 रूपये यौमिया होगी। वहीं बहुत ज्यादा हुनरमंद कारकुनों के लिए नजरसानी शुदा कम अज कम उजरत 1035 रूपये यौमिया होगी। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने बुनियादी ढांचे के मेयार में बेहतरी तामीरी सरगर्मियों को तेज करने और प्रोजेक्ट लागत को कम करने के लिए मुतबादल अशिया के इस्तेमाल और नाकारा साजो सामान से कारआमद शय बनाने की इख्तराई टेक्नोलॉजी को अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। पुलों की तामीर में जिद्दत तराजी से मुतालिक मैनल अक्वामी सेमिनार से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने आज प्रोजेक्टों की मंजूरी में तेजी लाने में डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम के रोल पर रोशनी डाली। जनाब गडकरी ने मजीद कहा कि सड़कों की तामीर में शहरी कूड़े राख प्लास्टिक रबर और बांस के इस्तेमाल से और पुलों में प्रीकास्ट ढांचों के इस्तेमाल से कम लागत वाले तामीराती तरीकेकार को आसान बनाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने से मुतालिक कई इकदाम का भी ऐलान किया। خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ ملک نے ایتھنال کی پیداوار میں اب تک کی سب سے بلند ترین سطح حاصل کی ہے، جس کے تحت تقریباً 250 ایتھنال ڈسٹلری سے 1633 کروڑ لیٹر ایتھنال کی پیداوار ہوئی ہے۔ آج نئی دلی میں دو روزہ بھارتی شوگر اور بایو انرجی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت نے 2030 تک 5% تک بایو ڈیزل حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ پنچایتی راج کے وزیر مملکت ایس پی سنگھ بگیل نے زمینی سطح پر قبائلی علاقوں تک توسیع سے متعلق پنچایتی ایکٹ پی ای ایس اے کے نفاذ پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے آج نئی دلی میں پی ای ایس اے پر قومی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے قبائلی برادریوں کی ترقی میں پی ای ایس اے ایکٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اصلاح شدہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی کے ایک مستقل رکن کے طور پر بھارت کی شمولیت کی بھرپور حمایت کی ہے۔ جناب میکرون آج صبح نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ فرانس کے صدر نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت جرمنی، جاپان اور برازیل کے ساتھ ساتھ افریقہ کی نمائندگی کرنے کے لیے دو افریقی ملکوں کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کے طور پر شامل کیا جانا چاہیے۔ فرانس کے صدر نے اقوام متحدہ خاص طور پر سلامتی کونسل کے موجودہ ڈھانچے کے اندر اصلاحات کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ اسے مزید مؤثر اور نمائندگی کرنے والا بنایا جا سکے۔ اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن، روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور چلی کے صدر گیبریل بوریک فونٹ سمیت دیگر عالمی رہنماؤں نے بھی اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھارت کی مستقل رکنیت کے لیے پرزور وکالت کی۔ جنگ بندی کے لیے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیل نے لبنان کے مسلح گروپ حزب اللہ کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے آج لبنان کی راجدھانی بیروت کے جنوبی مضافات سمیت لبنان بھر میں زبردست بمباری کی۔ 1975 سے 1990 کی خانہ جنگی کے بعد سے یہ لبنان کے لیے سب سے زیادہ مہلک ہفتہ ثابت ہوا۔ اس سے وسیع پیمانے پر علاقائی آگ بھڑک اٹھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
اسرائیل کی فوج نے حزب اللہ کے 75 ٹھکانوں کو نشانے بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور اسے اپنی کارروائیوں کا نیا مرحلہ قرار دیا ہے۔ ان حملوں میں اب تک 600 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 90,000 غریب شہریوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ امریکہ اور فرانس کے بعد اب برطانیہ نے بھی اسرائیل حزب اللہ کے درمیان 21 روزہ عارضی جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو لبنان میں پوری قوت کے ساتھ آپریشن انجام دینے کے احکامات دیے ہیں۔ اپنے سی این کمانڈر کے قتل کے بعد ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ پر زبردست دباؤ سے اس تنازع کے خطے بھر میں پھیل جانے پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے لبنان کی سرحد کے قریب زمینی کارروائی کا اشارہ دیتے ہوئے فوجی مشق انجام دی۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ آکاشوانی خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
بیروت میں واقع بھارتی سفارت خانے نے بڑھتی کشیدگی کے درمیان بھارتی شہریوں کو ملک چھوڑنے کی درخواست کی ہے اور اگلی اطلاع تک لبنان کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ بیڈمنٹن میں مکاؤ اوپن میں بھارت کی کدامبی سری کانت آج مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ سری کانت نے اپنے ہم وطن آیوش شیٹی کو پری کوارٹر فائنل میں 21-13 اور 21-18 سے شکست دی۔ خواتین کے ڈبلز مقابلے میں گایتری گوپی چند اور ٹریسر جولی پر مشتمل تیسری درجہ بندی کی حامل بھارتی جوڑی بھی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی جوڑی نے لن شی شن، ٹینگ شن ہشن کی تائیوان جوڑی کو پری کوارٹر فائنل میں 22-20 اور 21-11 سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اہم سائنسی تحقیق میں سہولت فراہم کرنے کے لیے 3 پرم رودر سپر کمپیوٹرز کو ملک کے نام وقف کیا۔ انہوں نے موسم اور آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق تحقیق کے لیے اعلی کارکردگی کے حامل کمپیوٹنگ سسٹم کا بھی افتتاح کیا۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے سرکردہ رہنماؤں نے ہریانہ میں واحد مرحلے کے اسمبلی انتخابات اور جموں کشمیر میں تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم تیز کر دی ہے۔ مرکز نے 1 اکتوبر سے محنت کشوں کے لیے کم سے کم اجرت کی شرحوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اصلاح شدہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی کے ایک مستقل رکن کے طور پر بھارت کی شمولیت کی بھرپور حمایت کی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔